यीशु मसीह का प्रकाश इटवा के संख्या 11 पशु की छवि।
और स्वर्ग में एक और अद्भुत चिन्ह दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों का तीसरा भाग खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ जो जन्मने को तैयार थी, ताकि जैसे ही उसका बालक जन्मे वो उसे निगल जाए। और उसने एक पुत्र जन्मा जो लोहे के दंड से सब जातियों पर राज्य करने वाला था, और उसके बालक को परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। और वो स्त्री जंगल में भाग गई जहां उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक स्थान तैयार था, ताकि वहां उसका पालन 1260 दिनों तक किया जाए। और स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की, और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की, पर वे जीत न सके, और उनके लिए स्वर्ग में अब कोई स्थान न पाया गया। और वो बड़ा अजगर, वो पुराना सर्प जिसे डेविल और शैतान कहा जाता है, जो सारे संसार को भरमाता है, निकाल दिया गया, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। और मैंने स्वर्ग में एक बड़े शब्द को ये कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार आ पहुंचा है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था नीचे गिरा दिया गया है, और उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजय पाई, और उन्होंने मृत्यु तक भी अपने प्राणों से प्रेम नहीं किया। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों आनंद करो, पर पृथ्वी और समुद्र के निवासियों पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही रह गया है। और जब अजगर ने देखा कि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, तो उसने उस स्त्री का पीछा किया जिसने वो पुत्र जना था, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, ताकि वो उड़कर जंगल में अपने स्थान पर पहुंच जाए, जहां वो सर्प के सामने से 1 काल और 2 काल और आधा काल तक पाली जाती है। और सर्प ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान जल उगल दिया, ताकि बाढ़ उसे बहा ले जाए। और पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर वो बाढ़ निगल ली जो अजगर ने अपने मुंह से उगली थी। तब अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी संतति के शेष जनों से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही रखते हैं, युद्ध करने को चला गया। प्रकाशित वाक्य 12:1-17।
मसीह और शैतान के बीच महान संघर्ष की पहली लड़ाई लूसिफर के विद्रोह के साथ तृतीय स्वर्ग में आरंभ हुई, और वही पहली लड़ाई प्रथम स्वर्ग में होने वाली अंतिम लड़ाई का प्रतिरूप है। आगे भी युद्ध होता है, क्योंकि हजार वर्षीय सहस्राब्दी के अंत में शैतान को कुछ काल के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो यरूशलेम पर आक्रमण करता है, पर उस लड़ाई में विजय की कोई संभावना नहीं है। आरंभ में तृतीय स्वर्ग में हुई वो लड़ाई जो अंत में प्रथम स्वर्ग की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती है, उस समय लड़ी गई जब अनुग्रह काल खुला पर था। जो स्त्री गर्भवती है वो इतिहास भर परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, और मसीह के इतिहास में वो पुत्र यीशु को जन्म देने ही वाली थी। अंतिम दिनों में वो जुड़वां संतान को जन्म देती है। रविवार के कानून से ठीक पहले वो प्रकाशित वाक्य तक उम्मा अध्याय 7 के 144,000 को जन्म देती है, और रविवार के कानून के समय वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 की बड़ी भीड़ को जन्म देने की प्रसव वेदना शुरू करती है। उसकी जुड़वां संतान एक जैसी नहीं है, पर वे जुड़वां है, और पहला जन्मा एलिया है तथा छोटा पुत्र मूसा है। आध्यात्मिक इसराइल के आरंभ में मूर्ति पूजक रोप का अजगर पुरुष शिशु यीशु को निगल जाने के लिए घात लगाए बैठा था, और आधुनिक रोप का अजगर अब 144,000 के पुरुष शिशु को निगल जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे मूर्ति पूजक रोम ने प्रारंभिक मसीही कलीसिया को सताया था, वैसे ही आधुनिक रोम रविवार कानून के संकट के दौरान उस उत्पीड़न को दोहराएगा। प्रारंभिक मसीही कलीसिया के समय वो स्त्री 1260 शाब्दिक वर्षों के लिए जंगल में भाग गई, और रविवार कानून के संकट के उत्पीड़न को प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 5 के 42 महीनों द्वारा प्रतीकित किया गया है। जंगल में परमेश्वर की प्रजा के लिए एक स्थान तैयार किया गया है जहां उन्हें भोजन दिया जाता है और उनका पालन पोषण होता है। प्रकाशित वाक्य के 8वीं अध्याय और 13वीं आयत में आखिरी 3 तुरहियों को 3 विपत्तियों के रूप में पहचाना गया है। प्रकाशित वाक्य कि ये विपत्तियां उन सत्ताओं के विरुद्ध इस्लाम के तुरही न्यायों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो रविवार के कानून पारित करती हैं। 12वीं अध्याय में चित्रित युद्ध में इस्लाम की भूमिका की पहचान तब होती है जब ये कहता है, धरती और समुद्र के निवासियों पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास थोड़े ही समय रह गया है। येजेबेल अपने धर्म त्यागी पति अहाब के माध्यम से जो उत्पीड़न करती है वो पृथ्वी के पशु और समुद्र के पशु पर लक्षित है। प्रकाशित वाक्य वाक्य 18 के शक्तिशाली स्वर्गदूत का आंदोलन हर सुधार आंदोलन की तरह 4 प्रमुख मील के पत्थरों से युक्त है जो न्याय की ओर ले जाते हैं और उसे समाहित करते हैं। पहले स्वर्गदूत के आंदोलन के लिए वे 4 मील के पत्थर थे। 11 अगस्त 1840, 1843 के वसंत में पहली निराशा, 12 से 17 अगस्त 1845 के बीच मध्यरात्रि की पुकार के संदेश का आगमन और 22 अक्टूबर 1845 को न्याय का आरंभ। इन 4 मील के पत्थरों का एक ही समग्र विषय समय था। 11 अगस्त 1840 प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 15 की समय भविष्यवाणी की पूर्ति था। 1843 की पहली निराशा समय से संबंधित एक असफल भविष्यवाणी का प्रतिनिधित्व करती थी। मध्यरात्रि की पुकार का संदेश पहले की असफल समय भविष्यवाणी का संशोधन था और 22 अक्टूबर 1844 मध्यरात्रि की पुकार के संदेश में बताए गए समय की पूर्ति थी। तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन उन्हीं 4 मार्ग चिन्हों को रखता है क्योंकि वे हर सुधार रेखा में विद्यमान हैं और हर सुधार रेखा के 4 मार्ग चिन्हों की तरह प्रत्येक मार्ग चिन्ह में वही भविष्यवाणी का विषय निहित है। 144,000 के आंदोलन के 4 मार्ग चिन्हों का विषय तीसरी विपत्ति का इस्लाम है। 11 सितंबर 2001 को तीसरी विपत्ति का इस्लाम मुक्त किया गया और फिर रोका गया। 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी ने टेनेसी के नैशविल पर एक इस्लामी हमले की पहचान की और तीसरी विपत्ति के इस्लाम का प्रतिनिधित्व किया। प्रकाशित वाक्य 11 की सड़क पर पड़ी सूखी हड्डियों को जगाने वाला संदेश मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की परिपूर्ण और अंतिम पूर्ति है और वो नैशविल वाली भविष्यवाणी का समय के तत्व के बिना एक सुधार प्रस्तुत करता है। ये 4थे मार्ग चिन्ह पर पूरा होगा जो रविवार का कानून है, जहां तीसरी विपत्ति का इस्लाम रविवार के शीघ्र आगामी कानून को लागू करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार करेगा। जब इस सत्य को इस तथ्य के साथ मिलाकर कि तीसरे स्वर्गदूत का शक्तिशाली आंदोलन आसन न्याय की चेतावनी है पहचाना जाता है, तब तीसरी विपत्ति द्वारा दर्शाया गया इस्लामी न्याय आसानी से उस विपत्ति के रूप में समझा जा सकता है जो पृथ्वी और समुद्र पर लाई जाती है। जीवितों का न्याय 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुआ और उस समय से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक पशु की प्रतिमा के गठन की परीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। रविवार के कानून से लेकर जब तक मिखाइल उठ खड़ा नहीं होता और मनुष्यों के लिए अनुग्रह का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शेष संसार की परीक्षा भी पशु की प्रतिमा के गठन द्वारा होगी। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स पर परीक्षा हो रही हो या रविवार के कानून के बाद समस्त विश्व की परीक्षा हो रही हो, ये वही परीक्षा है जिसमें हमारा अनंत भाग्य निर्धारित होगा। ये वो परीक्षा भी है जिसे हमें रविवार के कानून पर अनुग्रह का समय बंद होने से पहले अवश्य उत्तीर्ण करना है। पशु की प्रतिमा की परीक्षा का ये भविष्य सूचक क्रम जिसमें पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर विश्व की परीक्षा होती है, सही ढंग से समझना अत्यावश्यक है।
जब अमेरिका, जो धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि है, अंतरात्मा पर बलपूर्वक दबाव डालने और लोगों को झूठे विश्राम दिन का सम्मान करने के लिए बाध्य करने में पापसी के साथ एकजुट हो जाएगा, तब विश्व के प्रत्येक देश के लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। टेस्टिमोनीज खंड 6:18।
जब प्रतीकों को समझ लिया जाता है, तब प्रकाशित वाक्य 13 में वो अंश जो इन दो क्रमिक किंतु समान पशु की प्रतिमा की परीक्षाओं को संबोधित करता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक कारण ये है कि तृतीय स्वर्ग में पहले युद्ध में लूसिफर ने जो दूषित संसार अपनाया था, वो ये दर्शाता है कि प्रथम स्वर्ग में अंतिम युद्ध में शैतान का दूषित संसार फिर से कैसे प्रकट होगा। प्रथम स्वर्ग का युद्ध, जो रविवार के कानून से आरंभ होता है, समूचे विश्व के लिए पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल के दौरान पूरा होता है। 11 सितंबर 2001 से संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा का परीक्षण काल चल रहा है। जब हम इन दो परीक्षण कालों को क्रमिक मानते हैं, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर विश्व भर में, तब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के युद्ध में दर्शाए गए सत्यों को 2001 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास में समाहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लूसिफर के भ्रष्ट संचार, जिन्हें सम्मोहन कहा गया है, का प्रयोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के प्रथम स्वर्ग के युद्ध के दौरान अजगर की शक्ति द्वारा आधुनिक रूप में किया जाएगा। उस इतिहास में अजगर द्वारा प्रयुक्त सम्मोहन का उद्देश्य उन लोगों की हत्या करना है जिन्हें येजेबेल ने विधर्मी ठहराया है। 2001 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास में सदोम और मिस्र की सड़क पर दो गवाहों की हत्या कर दी गई। प्रकाशित वाक्य 11 की पहली पूर्ति में सदोम और मिस्र द्वारा दर्शाया गया राष्ट्र फ्रांस था। फ्रांस एक भविष्य सूचक राष्ट्र है जो दो शक्तियों से मिलकर बना है, जैसा कि मादे फारसी साम्राज्य था, जैसा कि प्राचीन इसराइल अपने विभाजित राज्यों में था, और जैसा कि यहूदा की दो गोत्रे अर्थात यहूदा और बिन्यामीन थीं। सभी दो सींग वाले राष्ट्र प्रतीकात्मक रूप से दो सींग वाला राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदोम का नगर और मिस्र का राष्ट्र गणतंत्रवाद। मिस्र और प्रोटेस्टेंटवाद सदोम के दो सींगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2020 में दो सींग कार्ड गिराए गए, गणतंत्रवाद का सींग और प्रोटेस्टेंटवाद का सींग। वैश्विकतावादी ड्रैगन शक्तियों द्वारा विश्वव्यापी वेब के माध्यम से प्रयुक्त सम्मोहन तब उसी रूप में इस्तेमाल किया गया जैसा कि वो आने वाले प्रथम स्वर्ग के युद्ध में किया जाएगा। विश्वव्यापी वेब से प्रसारित संदेश को नियंत्रित करके 2020 के चुनाव को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार हेरफेर किया गया कि परिणाम वैश्वीकरण की विचारधारा से मेल खाए। ये मात्र इस आवश्यकता का उदाहरण है कि ये समझा जाए कि पशु की प्रतिमा की परीक्षा पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न होती है और फिर संसार में।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह काल बंद होने से पहले पशु की प्रतिमा गठित होगी, क्योंकि वही परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनकी अनंत नियति तय होगी। आपका मत असंगतियों का ऐसा घालमेल है कि बहुत कम लोग ही धोखा खाएंगे।
प्रकाशित वाक्य 13 में ये विषय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित वाक्य 13:1-17 उद्धृत। ये वो परीक्षा है जिससे परमेश्वर के लोगों को मुहर लगने से पहले होकर गुजरना होगा। जो भी उसकी व्यवस्था का पालन करके और नकली सप्त को स्वीकार करने से इनकार करके परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करते हैं, वे प्रभु यहोवा परमेश्वर के ध्वज तले पंक्तिबद्ध होंगे और जीवित परमेश्वर की मुहर प्राप्त करेंगे। जो स्वर्गीय उत्पत्ति के सत्य को छोड़ देते हैं और रविवार का सप्त स्वीकार करते हैं, वे पशु का चिन्ह प्राप्त होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 15:15।
रविवार के कानून के लागू होने पर सातवें दिन के एडवेंटिस्टों के लिए अनुग्रह का समय समाप्त हो जाता है। संयुक्त राज्य का उदाहरण अपनाने वाले देशों का भी अनुग्रह का समय उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसा संयुक्त राज्य में हुआ।
विदेशी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुकरण करेंगे, हालांकि वो नेतृत्व करेगी, फिर भी वही संकट विश्व के सभी भागों में हमारे लोगों पर आएगा। टेस्टिमोनीज खंड 6:395।
अंतिम गतियां तेज होती हैं।
दुष्ट शक्तियां अपने बलों को मिलाकर एकजुट और समेकित हो रही हैं। वे अंतिम महान संकट के लिए सुदृढ़ हो रही हैं। हमारी दुनिया में शीघ्र ही बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और अंतिम घटनाक्रम तीव्र गति से घटित होंगे। गवाहियां खंड 9:11।
पशु की प्रतिमा के परीक्षण को समझने के लिए कुछ हद तक तकनीकी भविष्यवाणी संबंधी अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, पशु का चिन्ह और पशु की प्रतिमा दो अलग अलग प्रतीक है।
पशु की प्रतिमा उस प्रकार के धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद का प्रतिनिधित्व करती है जो तब विकसित होगा जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं अपने सिद्धांतों के प्रवर्तन के लिए नागरिक सत्ता की सहायता मांगेंगी। पशु का चिन्ह अभी भी परिभाषित किया जाना बाकी है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 414।
पशु का चिन्ह रविवार का पालन है और पशु की प्रतिमा वो चर्च है जो अपने धार्मिक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए राजकीय सत्ता का उपयोग करता है।
प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा रविवार पालन का प्रवर्तन पोपतंत्र अर्थात पशु की उपासना का प्रवर्तन है, जो लोग चौथी आज्ञा की मांगों को समझते हुए सच्चे विश्राम दिन के स्थान पर झूठे का पालन करना चुनते हैं। वे इस प्रकार उसी शक्ति को सम्मान अर्पित करते हैं जिसके द्वारा ही इसका आदेश दिया गया है। परंतु किसी धार्मिक कर्तव्य को धर्मनिरपेक्ष सत्ता के बल से लागू करने के इसी कार्य में कलीसियाएं स्वयं पशु की प्रतिमा बना देंगी। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार पालन का प्रवर्तन पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना का प्रवर्तन होगा। महान विवाद 548-548।
पशु की प्रतिमा कलीसिया और राज्य के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें संबंध पर नियंत्रण कलीसिया के हाथ में होता है। जेजेबेल ने अहाब पर शासन किया, जैसे हेरोदियास ने हेरोद पर शासन किया। पशु का चिन्ह रविवार का पालन है। पशु की प्रतिमा समय के साथ विकसित होती है। पशु का चिन्ह समय के एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। पशु की प्रतिमा क्रमशः विकसित होती है, परंतु तभी अपनी पूर्ण परिपक्वता पर पहुंचती है जब उसके पास राज्य से अपनी धार्मिक मत सिद्धियों को लागू करवाने की शक्ति होती है। परीक्षा प्रतिमा के गठन से संबंधित है।
परंतु पशु के लिए प्रतिरूप क्या है और ये कैसे गठित किया जाएगा? ये प्रतिरूप दो सींगों वाले पशु द्वारा बनाया जाता है और वो पशु के लिए प्रतिरूप है। इसे पशु का प्रतिरूप भी कहा जाता है। तब ये जानने के लिए कि वो प्रतिरूप कैसा है और वो कैसे गठित होना है, हमें स्वयं उस पशु अर्थात पोपशाही की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। जब प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार की सरलता से भटककर और मूर्ति पूजक विधियों व रीति रिवाजों को स्वीकार कर भ्रष्ट हो गई, तब उसने परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ्य खो दिया और लोगों के विवेकों पर नियंत्रण पाने के लिए उसने लौकिक सत्ता का समर्थन मांगा। परिणामस्वरूप पोप तंत्र उत्पन्न हुआ, एक ऐसी कलीसिया जो राज्य की शक्ति को नियंत्रित करती थी और उसे अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेषकर विधर्म के दंड हेतु प्रयोग में लाती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पशु की प्रतिमा गठित करने के लिए धार्मिक सत्ता को नागरिक सरकार पर इस प्रकार नियंत्रण करना होगा कि राज्य का अधिकार भी कलीसिया द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जाए। महान विवाद 600-3।
पशु की प्रतिमा और पशु का चिन्ह, इनके बीच का अंतर एडवेंटिस्टों के बीच काफी पारंपरिक समझ है। इस विषय में एडवेंटवाद सामान्य तरह जहां भटक जाता है वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में है। वे किसी तरह रविवार के कानून के बाद संयुक्त राज्य की गतिविधि, जब वो संसार को पशु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बाध्य करता है, को संयुक्त राज्य में पशु की प्रतिमा की स्थापना के साथ मिला देते हैं। ये भविष्यवाणी के दो अलग अलग कालखंड है। मसीही बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा को दृढ़ करने आए और सप्ताह के मध्य में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। इस प्रकार वो सप्ताह उन दो कालखंडों का प्रतीक है जब पशु की छवि निर्मित होती है। मसीह का वो सप्ताह दो समान भागों में विभाजित था जो मसीह की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम दिनों में परीक्षण के दो कालखंड मसीह विरोधी की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1260 दिनों की पहली अवधि में मसीह ने स्वयं अपनी गवाही दी और फिर उन्होंने क्रूस पर प्राण दे दिए। इसके बाद उतने ही 1260 दिन रहे जिनमें चेलों ने गवाही दी, जब तक कि स्तेफनुस को पत्थरों से मारे जाने पर मिकाएल उठ खड़ा हुआ। क्रूस रविवार के कानून का प्रतीक है। पशु की प्रतिमा के गठन से संबंधित परीक्षा की ये दो अवधियां ये पहचान कराती हैं कि पहली अवधि 144,000 से जुड़ी है, जो मसीह द्वारा प्रतीकित है, और वो अवधि रविवार के कानून पर समाप्त होती है, जिसका प्रतीक क्रूस है। वही अंतिम समान परीक एक्शन अवधि, जिसका प्रतिनिधित्व मसीही के समय चेलों के कार्य ने किया था, बहुत बड़ी भेड़ पर केंद्रित है, और ये तब समाप्त होती है जब मिकाएल उठ खड़ा होता है, स्तेफनुस को पत्थरों से मारे जाने पर नहीं, बल्कि दानियल 12:1 में मानव अनुग्रह काल के समापन पर। कुछ लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:11 और आगे में घटनाओं के वास्तविक क्रम को देखने में असफल रहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानबूझकर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर की तरह बोलता है, तब वो संघ के अंदर नायक हाईएस्ट नंबर खव प्रपंचायत मास्टर्स की पशु की प्रतिमा के पूर्ण निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रविवार का कानून पारित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा का निर्माण रविवार के कानून से पहले हो जाना चाहिए। यदि बात समझ में नहीं आती तो द ग्रेट कंट्रोवर्सी से अभी उद्धृत किए गए पिछले कुछ अंशों को फिर से पढ़ें। अध्याय 13:11 आयत में जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर की तरह बोलता है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मत्यागी कलीसियाओं के निर्देश पर विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा रविवार का कानून पारित करने की कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। रविवार के कानून का आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के मुंह से निकलता है।
मैंने देखा कि दो सिंगों वाले पशु का मुख अजगर जैसा था और उसकी शक्ति उसके सिर में थी और आज्ञा उसके मुख से निकलेगी। स्पाल्डिंग एंड मैगन 1।
ये बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती रही है कि एडवेंटवाद के लिए यह समझना कठिन क्यों है कि जब दो सिंगों वाला पृथ्वी का पशु ड्रैगन की तरह बोलता है, तो वो केवल संयुक्त राज्य में रविवार के कानून को नहीं चिह्नित करता, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पापाई समुद्री पशु की प्रतिमा पूरी तरह विकसित हो चुकी है। संयुक्त राज्य में रविवार का कानून पारित होने के लिए चर्च और राज्य का गठजोड़ पहले से ही पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य के धर्मत्यागी चर्च ऐसा नहीं करते कि वे सोमवार को इकट्ठा हों, मंगलवार को कांग्रेस में जाएं और कह दें कि उन्हें बुधवार तक रविवार का कानून पारित चाहिए। चर्च और राज्य के बीच जो मिलाप की प्रक्रिया घटित होती है, उसे पशु की प्रतिमा के निर्माण के रूप में दर्शाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे दानियल अध्याय 3 में स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण। इसे तैयार होने में कुछ समय लगेगा। पशु की प्रतिमा वही व्यवस्था है जिसका उपयोग पाप सत्ता ने अंधकार युग में लाखों शहीदों की हत्या करने के लिए किया था, और रविवार के कानून को लागू कराने के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण और कानूनी मिसालें गढ़ने हेतु सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक विकासों की आवश्यकता होती है। वे विकास पशु की प्रतिमा की उस परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके द्वारा हमारी शाश्वत नियति का निर्णय होगा, और वही वो परीक्षा है जिसे हमें हम पर मुहर लगाए जाने से पहले उत्तीर्ण करना होगा।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह काल समाप्त होने से पहले पशु की छवि गठित की जाएगी, क्योंकि वही परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनकी अनंत नियति निर्धारित होगी। ये वही परीक्षा है जिससे दो पर मुहर लगने से पहले परमेश्वर की प्रजा को गुजरना होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस वॉल्यूम 15:15।
रविवार का कानून वही आधी रात का संकट है जिसमें 10 कुमारियों के दृष्टांत की अंतिम और पूर्ण पूर्ति प्रकट होती है। उस आधी रात के संकट में ये प्रकट हो जाएगा कि हम बुद्धिमान फिलाडेल्फियाई या मूर्ख लौदीकियाई कुमारियां हैं। मूर्ख पशु का चिह्न ग्रहण करेंगे और बुद्धिमान परमेश्वर की मुहर प्राप्त करेंगे। जो कोई भी कभी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में शामिल हुआ है, उसने सदस्य बनने से पहले सिद्धांतगत सत्यों की सूची से सहमति व्यक्त की है, और इसलिए हर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को सबके सत्य का प्रकाश दिया गया है।
यदि सत्य का प्रकाश आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो चौथी आज्ञा के शब्द को प्रकट करता है और ये दिखाता है कि रविवार पालन के लिए परमेश्वर के वचन में कोई आधार नहीं है, और फिर भी आप झूठे शब्द को पकड़े रहते हैं, उस शब्द को पवित्र मानने से इनकार करते हुए जिसे परमेश्वर मेरा पवित्र दिन कहते हैं, तो आप पशु का चिन्ह ग्रहण करते हैं। ये कब होता है? जब आप उस आदेश का पालन करते हैं जो आपको रविवार को श्रम छोड़ने और परमेश्वर की आराधना करने का हुक्म देता है,
जबकि आप जानते हैं कि बाइबल में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो दिखाता हो कि रविवार एक सामान्य कार्य दिवस से भिन्न है, तब आप पशु का चिन्ह ग्रहण करने के लिए सहमत होते हैं और परमेश्वर की मोहर को अस्वीकार करते हैं। यदि हम ये चिन्ह हम अपने माथे पर या अपने हाथ पर प्राप्त करते हैं, तो अवज्ञाकारी लोगों के विरुद्ध जो दंडादेश सुनाए गए हैं वे हम पर अवश्य पड़ेंगे, परंतु जीवित परमेश्वर की मोहर उन पर लगाई जाती है जो प्रभु के शब्द का विवेकपूर्वक पालन करते हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड, 27 अप्रैल 1911।
संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा का निर्माण भविष्यवाणी की दृष्टि से 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुआ। इस तथ्य की पुष्टि करने वाले कई भविष्यवाणी संबंधी साक्ष्य हैं। उस समय से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अपनी शाश्वत नियति निर्धारित कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे पशु की प्रतिमा की परीक्षा पास करते हैं या पशु की प्रतिमा की परीक्षा में असफल होते हैं। मेरा तर्क है कि बहुत कम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ये भी जानते हैं कि पशु की प्रतिमा एक परीक्षा है। बहुत कम, यदि कोई हों भी, जानते हैं कि ये परीक्षा कैसे हो सकती है, और इससे भी महत्वपूर्ण ये कि वे नहीं जानते कि परीक्षा पास करने के लिए क्या आवश्यक है। हमारा न्याय केवल उस प्रकाश से नहीं होता जो हमारे पास है, बल्कि उस प्रकाश से भी होता है जो हमारे पास हो सकता था यदि हम ज्ञान की वृद्धि को समझने में स्वयं को लगाते। इसलिए लौदीकिया की अंधता पाप के 6000 वर्षों में सबसे बड़ी अंधता है।
मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो जाती है, क्योंकि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं भी तुझे अस्वीकार कर दूंगा कि तू मेरे लिए याजक न रहेगा। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल दिया है, इसलिए मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। होशे 4:6।
पशु की छवि के गठन की परीक्षा शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होती है, और यदि हम वो परीक्षा पास नहीं करते तो हम तेल प्राप्त करने से इनकार करने वाली अन्य सभी मूर्ख लौदीकिया की कुंवारियों के साथ पशु का चिन्ह प्राप्त करेंगे। मैं यहाँ ये सिद्ध करने के लिए नहीं हूँ कि पशु की छवि की परीक्षा 11 सितंबर 2001 को शुरू हुई और रविवार के कानून पर समाप्त होती है। मेरा उद्देश्य केवल उस भविष्यवाणी संबंधी तर्क की पहचान करना है जो रविवार का कानून पारित होने के बाद संयुक्त राज्य की भूमिका, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 में पहचानी गई है, को समझने के लिए आवश्यक है। पद 11 में वो अजगर के समान बोलता है, और उस बिंदु से आगे ही शब्द पर ध्यान बनाए रखना महत्वपूर्ण है जिस पशु की छवि को तब संयुक्त राज्य दुनिया से स्थापित करवाने के लिए मजबूर करेगा। वो संयुक्त राज्य के भीतर की पशु की छवि नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही अतीत की बात हो चुकी है।
और मैंने पृथ्वी से ऊपर आते हुए एक और पशु को देखा। उसके दो सींग भेड़ के बच्चे के समान थे, और वो अजगर की तरह बोलता था। और वो पहले पशु के सामने उसकी सारी शक्ति का प्रयोग करता है, और पृथ्वी और उस पर रहने वालों को उस पहले पशु की आराधना करने के लिए बाध्य करता है, जिसका प्राण घातक घाव चंगा हो गया था। और वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार देता है। और जिन चमत्कारों को करने की उसे पशु के सामने शक्ति दी गई थी, उनके द्वारा वो पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देता है, और पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की एक मूर्ति बनाएं जिसे तलवार से घाव हुआ था, और वो जीवित हो उठा। और उसे उस पशु की मूर्ति को प्राण देने की शक्ति दी गई, ताकि उस पशु की मूर्ति बोल भी सके, और जो जो लोग उस पशु की मूर्ति की आराधना न करें वे मार डाले जाएं। और वो सबको, छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास, उनके दाहिने हाथ पर या उनके ललाट पर एक चेन लगवा देता है, और ये कि कोई व्यक्ति न खरीद सके और न बेच सके, सिवाय उसके जिसके पास वो चिन्ह या उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या हो। प्रकाशित वाक्य 13:20-70।
उन 7 पदों में ही शब्द 8 बार आता है। हर बार जब ही शब्द का प्रयोग होता है, वो मूल ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय अजगर के समान बोलता था की ओर संकेत करता है। संयुक्त राज्य ने जब अजगर के समान बोला, तब जिस पशु की मूर्ति की परीक्षा में संयुक्त राज्य के एडवेंटिस्ट या तो उत्तीर्ण हुए या असफल हुए, वही परीक्षा फिर विश्व के अन्य राष्ट्रों के एडवेंटिस्टों के लिए और साथ ही परमेश्वर के उन अन्य बच्चों के लिए भी दोहराई जाती है जो अभी भी बाबिल में है। हम अगले लेख में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में संयुक्त राज्य के विषय पर अपना विचार विमर्श जारी रखेंगे, परंतु मुझे आपको ये स्मरण कराना है कि हम इस समय इस सत्य पर विचार क्यों कर रहे हैं। तीसरे स्वर्ग में ले सुफर के साथ आरंभ हुआ युद्ध उस युद्ध का प्रतिरूप है जो रविवार के कानून के समय पहले स्वर्ग में आरंभ होता है। दोनों युद्धों में ड्रैगन के भ्रष्ट संचार दर्शाए गए हैं। शैतान के भ्रष्ट संचार का आधुनिक प्रकटन उस सम्मोहित तंद्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के बाद के इतिहास में पृथ्वी ग्रह फंस जाएगी। वो भ्रम सूचना सुपर हाईवे कहे जाने वाले माध्यम पर विश्वव्यापी वेब के नियंत्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है। सूचना सुपर हाईवे के विभिन्न मार्ग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कथित विज्ञान, मनोरंजन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समाचार मीडिया का मार्ग है। एक बार जब यह सत्य पहचान लिया जाता है कि सूचना राजमार्ग शैतानी सम्मोहनकारी संचार का आधुनिक रूप है और साथ ही वो सूक्ष्म सम्मोहन भी जिसका उपयोग शैतान ने तीसरे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के युद्ध में किया था, तब हम ये स्थापित कर सकते हैं कि सूचना राजमार्ग दुनिया के लिए पशु की प्रतिमा की अंतिम परीक्षा का एक तत्व है जो रविवार के कानून के बाद घटित होती है। तब ये पहचानना आसान होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पशु की प्रतिमा की पहली परीक्षा में भी अंतिम की तरह वही भ्रष्ट शैतानी संचार होना चाहिए। रविवार के कानून से लेकर अनुग्रह काल के अंत तक सूचना राजमार्ग को भ्रष्ट करने में शैतानी के कार्य की गवाही ये प्रमाण प्रदान करती है कि 2020 में पृथ्वी के पशु के दो मेन सींग, रिपब्लिकनवाद और सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद का अवशेष की हत्या कैसे अंजाम दी गई। ये सूचना राजमार्ग के द्वारा किया गया, जिसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 11 में सड़क कहता है। इन भविष्य सूचक तथ्यों की मुहर का खुलना उन बातों का एक अंश है जिन्हें पशु की प्रतिमा की परीक्षा पास करने का इरादा रखने वालों के लिए समझना आवश्यक है। जिस प्रतिमा को भविष्यद्वक्त्री ने स्पष्ट रूप से देखा था कि वो परख का समय समाप्त होने से पहले और 144,000 पर मुहर लगाए जाने से पहले बन जाएगी।
जब आदेश जारी होगा और मुहर लगा दी जाएगी, तब उनका चरित्र अनंत काल तक शुद्ध और निष्कलंक बना रहेगा। टेस्टिमोनीज खंड 5, 298।